हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 8, जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। जब शुकदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को ब्रह्मा और नारद के बीच में हुए वार्तालाप के विषय में बताया, जिसमें ब्रह्मा जी ने अंत में नारद मुनि को कहा, इदं भागवतम नामम यन्मे भगवतोदितम, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही श्रीमद् भागवतम नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में ब्रह्मा जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये आदेश दिया कि आप इस भागवतम का विस्तार कीजिए। इतनी कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में बहुत सारे प्रश्न आए और वो इस भागवतम महापुराण को श्रवण करना चाहते हैं। उसके लिए परीक्षित महाराज इस अध्याय में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जिनको प्रश्नों को समझकर सुनकर हम आगे की कथा को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और आगे जो जितने भी यहाँ पर प्रश्न होंगे, आगे की कथा समझो इन प्रश्नों के उत्तर के उत्तर में ही शुकदेव गोस्वामी बताते जाएंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिनां नीरस्तसाम्या दिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितायै न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वीतसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्य नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 8 राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक नंबर 1। राजा उवाच उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन। ब्रह्मण चोदितो ब्रह्मण। राजोवाच यानी राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मण चोदितो ब्रह्मण यानी ब्रह्मा जी चोदित यानी आदेश आदेशित होकर ब्रह्मन हे विद्वान ब्रह्मण शुकदेव गोस्वामी गुणख्याने मतलब दिव्य गुणों के वर्णन में, गुणस्य यानी भगवान जो कि भौतिक गुणों से रहित हैं, च तथा यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यानी तथा जिनको यथा जितना प्राह बतलाया किसने, नारदो देवदर्शन नारद मुनि ने, देवदर्शन वह जिसका दर्शन देवता के दर्शन समान है। अनुवाद। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं, किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और किन किन के समक्ष बोले। नारद मुनि ने जब ब्रह्मा से ये आदेश प्राप्त किया कि आप इस श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो, तो शुकदेव गोस्वामी बोले कि क्योंकि नारद मुनि ने साक्षात ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया तो एज इट इज बताया अपने शिष्यों को, तो वो कौन कौन भाग्यवान हैं जिनको नारद मुनि ने उपदेश दिया और नारद मुनि ने कितना कितना और किस किस को बताया। भगवान जो कि दिव्य गुणों से विभूषित हैं, लेकिन फिर भी भौतिक गुणों से तो वो रहित हैं, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कैसे और कहाँ किन किन के समक्ष किया। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था, ब्रह्मा जी को परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था, अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य हैं। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह दिव्य ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही पद्धति के द्वारा सारे विश्व में फैलता है। अवरोही मतलब गुरु से शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, इस तरह से गुरु परंपरा में सबको ये ज्ञान प्राप्त होता है। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं वे ईश्वर का प्रतिनिधि करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रमाणिक होती है और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया इसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी सुंदर बात बता रहे कि शिष्य परंपरा की परीक्षा क्या है, कि शिष्य वही बोलेगा जो उसके गुरु ने सिखा गुरु, और फिर वो गुरु वही बोलेगा जो उसने अपने गुरु से सुना। इस तरह से ये शिष्य परंपरा में वही शब्द बताए जाएंगे जो कि भगवान ने साक्षात अपने शिष्य, क्योंकि ये गुरु परंपरा तो भगवान से स्टार्ट होती है। अब भगवान गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज। इसी बात को भगवान ने समझो अर्जुन को बताया, इस बात को भगवान ने पहले बहुत पहले जो है वो ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारद ने वेद व्यास जी को बताया, और इस तरह करते 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 श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको बताया। और हम सबको क्या करना है, इसको एज इट इज बताना है कि भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो ये परंपरा में एज इट इज जब बताया जाता है तो उसका वर्णन जो वास्तविक ज्ञान में होता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार से वितरित किया उसका तो वर्णन बाद के सिकंदों में आएगा, लेकिन वो एज इट इज। अब ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के पूर्व भी था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान का को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वो गुण रहित हैं, वरना यह कि उनमें सत्तो रजो या तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणों से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जैसे यह श्लोक में बताया गया है, गुणाख्याने गुणस्य च, गुणाख्याने मतलब दिव्य गुणों जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, अगुणस्य मतलब उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है, सत्तो रजो और तमो गुण नहीं है, लेकिन भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरिरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरिरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। एतत् वेदितुम इच्छामि, एतत् मतलब यह, वेदितुम मतलब जानने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूँ। तत्त्वम तत्त्व विदाम्बर, तत्त्वम यानी सच्चाई, तत्त्व विदाम यानी परम सत्य को भली भांति जानने वालों का, वर हे श्रेष्ठ, हरे अद्भुत वीर्यस्य, हरे मन भगवान का अद्भुत वीर्यस्य यानी अद्भुत शक्ति संपन्न की, कथा लोक सुमंगला, कथा लोक, लोक यानी समस्त लोकों के लिए सुमंगला शुभ कल्याणकारक। अनुवाद, राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के जीवों के लिए शुभ हैं। बहुत श्री श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से ब्रह्म में रहता है। श्रीमद् भागवतम भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन यह अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है। जैसे यहाँ पर लिखा कथा लोक सुमंगला, तो हर किसी के, खाली भक्तों के लिए नहीं है, साधारण प्राणियों के लिए भी कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में फंसे हुए अभक्त लोग भी इसकी चंगुल से छूट जाते हैं। यदि वे श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक शिष्य परंपरा के समुचित स्तोत्र से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनते हैं, केवल भक्त जो है वो ही इससे लाभ नहीं लेते, लेकिन भक्त को क्योंकि भगवान में, भगवान के अवतारों में, भगवान के लीलाओं में, कार्यकलापों में बहुत रुचि आ सकती होती है, इसलिए उससे दिव्य आनंद प्राप्त होता है प्रारंभ में। लेकिन जो अभक्त हैं, जो माया के मोह में फंसे हुए, वो भी जैसे इस भागवतम को श्रवण करेंगे तो धीरे 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 उनके मन का मोह समाप्त हो जाएगा और वो माया के फंदे से बाहर निकल आएंगे, यदि वो ध्यान पूर्वक शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनेंगे। क्योंकि जो सुनाने वाला पवित्र होगा तभी सुनने वाले के अंदर भी प्योरिटी आएगी। तो जिस तरह से हम श्रील प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को इतना विस्तार से, इतना सुंदरता से बताया है कि जो कोई साधारण से साधारण व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति भी पढ़ेगा ना तो उसको समझ में आएगा। आगे राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भागवत कथा को सुनाने के लिए निवेदन करते हैं। वे कहते हैं, कथयस्व महाभागा यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निःसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभाग, कथयस्व मतलब कृपा करके मुझे आगे कहिए, महाभाग हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, यथा हम अखिल आत्मनि, यथा मना जिस प्रकार, अहम मना में अखिल आत्मनि यानी परमात्मा को, कौन परमात्मा, कौन अखिल आत्मा, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को निवेश यानी स्थापित करके, निसंग यानी भौतिक गुणों से मुक्त हो जाऊंगा। कहाँ पर स्थापित करके, मन में, त्यक्षे और फिर मुझे क्या करना है, जब मैं अपने मन में आपकी कथाओं के द्वारा भगवान को अपने मन में स्थापित करूंगा और मेरा मन भगवान के चरणों में लगेगा, फिर त्यक्षे कलेवरम, फिर मैं बहुत ही सरलता से अपने इस कलेवर को, अपने शरीर को त्याग सकूंगा। अनुवाद, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णित दिव्य कथा के श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य। यानी अगर आज इस कलयुग में भी हम भगवान का सानिध्य चाहते हैं, भगवान का निरंतर साहचर्य चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं को पूर्ण रूप से तन्मय होकर सुने और परम भगवान कृष्ण के साथ ऐसे निरंतर साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। क्योंकि जिस चीज का आप चिंतन करते हो उसके अंदर जो गुण होते हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं, है ना। संसार में आज हम सब दुखी क्यों है जानते हो, दुखी इसलिए कि जिसका चिंतन करते ना वो दुखी है, कभी कभी नहीं लगता? हमारे पास सब कुछ होता है, कोई अभाव नहीं होता, लेकिन मन बहुत उदास रहता है, मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत दुखी होता है। इसका कारण ये है कि सुबह से लेकर रात तक जिसके बारे में सोचते हैं, जिसको याद करते ना, वो दुखी है, वो कष्ट में है, वो परेशान है, तो फिर हम भी आनंद से नहीं जी सकते। उसी कारण से हम दुखी रहते हैं। हम कोई दुख नहीं होता फिर भी दूसरों के विषय में सोच, इसी तरह से जब भौतिक जीव के विषय में सोचने से उनके हृदय का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, भगवान पूर्ण आनंदमय है। तो इसलिए जब जीव भगवान के विषय में सोचता है तो भगवान क्योंकि समस्त गुणों से रहित है, तो जीव भी भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कलमश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य मनुष्य को भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमश बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का कारण होता है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होना है, अर्थात दिव्यत्व को प्राप्त करना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराजा परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृपा पूर्वक बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराजा परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान क्योंकि समस्त गुणों से रहित है और जीव जब भगवान के विषय में श्रवण करता है तो भगवान का स्वभाव जीव को प्राप्त होता है, और समस्त गुणों से पार होना या समस्त गुणों से रहित होना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जीव समस्त गुणों से रहित होगा तो वो आध्यात्मिक स्थिति में आएगा, और आध्यात्मिक स्थिति में आकर और फिर जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करेगा, कथा को श्रवण करेगा, तो धीरे 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 वो उसके अंदर कृष्ण स्थापित हो जाएंगे, उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसके विचारों में, क्योंकि जीव का जो कल्याण, वास्तविक कल्याण है वो क्या है? अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ परो पुंसाम, यानी कि जीव के जन्म का जो वास्तविक लाभ है वो क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में वो भगवान श्री कृष्ण को याद करता हुआ यदि इस कलेवर को छोड़ता है तो समझो उसे जीवन में परफेक्शन प्राप्त होगा। भगवान कहते भगवत गीता में अंत काले माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सम्मत भावम नाति याति नास्त्यत्र संशयम, कि अंत समय में यदि कोई केवल मुझे याद करता हुआ शरीर को तो छोड़ता है तो यह प्रयाति सम्मत भावम, वो डेफिनेटली मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवतम सुनते हैं उनका सुनना महाराजा परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराजा परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका है। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होते, वह श्रीमद् भागवतम को सुनकर उसके द्वारा कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है, निसंदेह ऐसा श्रोता वृत्तिक वाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवतम का कृत्रिम श्रवण करने का दिखावा महाराजा परीक्षित द्वारा श्रवण करने से के समान लाभदायक होगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई कृत्रिम विधि से सिर्फ है ना किस कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता तो उसको वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक लाभ क्या है कि भगवान की कथाओं को इतना हृदय से सुने कि भगवान हृदय में आकर स्थापित हो जाए और जीव सारे गुणों से मुक्त हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल जो सप्ताह पाठ करवाया जाता है और कुछ पैसे देकर भागवतम का सप्ताह पाठ कृत्रिम श्रवण करने से का दिखावा जो है वो महाराज प्रेक्षक के द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक नहीं होगा। ठीक है, उसको कुछ तो यश प्राप्त होगा लेकिन वास्तविक लाभ क्या है, हृदय के अंदर से समस्त जो मलिनता है वो साफ हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। तो वो तभी होगा जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा करेगा, जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी के समान परीक्षित महाराज कहते हैं, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगाना जाए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी फिर से सावधान कर रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, जो भगवान के साथ प्रेम करते हैं, अपने अस्तित्व को जानते हैं, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ, भगवान कौन है, उन सब के विषय में जो जानते हैं, ऐसे भक्त के द्वारा यदि कोई भागवतम सुनता है तो उसका वास्तविक लाभ होता है। और अगर वित्तिक लोग होते हैं जो धन कमाने के लिए भागवत पाठ करते हैं, उनके द्वारा अगर हम सुनते हैं तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वित्तिक लोगों के द्वारा ठगाना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में श्री कृष्ण की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो जाए। कंटिन्यूस श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे और वो 7 दिन उसने श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनने में लगाए। उसी तरह से भक्तों हमारे पास भी 7 ही दिन है। इन 7 दिनों में ही 1 दिन में तो आएंगे ना यमराज, तो इन 7 दिनों में मतलब जितना हमारे जीवन है उनमें हमें कंटिन्यूस भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो और वह हमारा वो और वह इस प्रकार से मुक्त हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे यदि दिव्य संगति भगवान की प्राप्ति करेगा तो समस्त भौतिक रोगों से भौतिक गुणों से जीव पृथक हो जाएगा और भगवान को हृदय में स्थापित करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग हैं पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाहे थे। जब तक श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग हैं पहले ही त्याग दिए थे। इस संसार में जब हम आते हैं तो जो हमारा धन होता है, जो हमारी संपत्ति होती है, जो हमारा परिवार होता है, वो भौतिकतावाद सबसे ज्यादा हमको आकर्षित करता है ना, क्योंकि उसमें हमारा मेरापन होता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति। महाराज परीक्षित ने ये तो त्याग दिया था, पहले ही त्याग दिया था, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। जीव धन परिवार संपत्ति को त्याग कर भी अपने शरीर के प्रति सचेत रहता ना कि ये मेरा शरीर है, इसे मुझे पालना है, इसकी सुरक्षा करनी है।
लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे जब तक पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होगा, जब तक धन संपत्ति परिवार यहाँ तक के शरीर का भी भान नहीं रहेगा, जब एकमात्र कृष्ण का प्रेम ही जीवन में एक वस्तु रह जाएगा। अनन्य का मतलब ये है कि किसी और आकर्षण का लेश मात्र भी जीवन में ना हो, तब जो आनंद आएगा उसका विचार करना, उसकी सिर्फ सोच खाली हम ये सोचें कि जब हमारे पास कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त तो और कुछ बचेगा नहीं, तब जो आनंद आएगा वो दिव्यानंद है और तब कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि अनन्य चेता सततम यो मम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। जो अनन्य चित के साथ केवल मेरा स्मरण करता है, जैसे गोपियों को अपने धन अपने परिवार की ही नहीं अपने शरीर की भी कोई चिंता नहीं थी, अपने शरीर के विषय में क्या पहनना कहाँ पर है कैसे खाना कुछ भी याद नहीं रहता था सिवाय कृष्ण के। काश जीवन में कभी ऐसी दशा का आस्वादन हो जब केंद्र बिंदु केवल कृष्ण हो। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं उसके लिए हमें निरंतर भागवत कथा श्रवण करनी पड़ेगी। निरंतर जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते जाएंगे तो जीवन केवल कृष्णमयी बन जाएगा। आगे बहुत ही सुंदर विधि बता रहे हैं कि हृदय में भगवान को स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वे कहते हैं श्रवतः श्रद्धया नित्यं ग्रहन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नार्ति दीर्घेण भगवान् विशति हृदि। श्रवतः श्रद्धया नित्यं ग्रहन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशति हृदि। श्रवतः श्रद्धया नित्यं ग्रहन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशति हृदि। श्रवतः श्रद्धया नित्यं, बस ये एक ही विधि है। श्रवतः अर्थात सुनने वालों का, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा पूर्वक, नित्यम अर्थात नियमित रूप से सदैव, ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम यानी ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, स्वचेष्टितम यानी अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, कालेन अति दीर्घेण, कालेन मतलब अवधि न मतलब नहीं, अति दीर्घेण अर्थात अत्यंत दीर्घ काल, भगवान विशते हृदि, भगवान अर्थात श्री भगवान विशते अर्थात प्रकट होते हैं हृदि यानी हृदय में, उसको काले नाति दीर्घेण बड़ा काल नहीं लगेगा, बहुत थोड़े समय में जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे वैसे ही कृष्ण हृदय में आकर प्रकट होने लगेंगे। ये भागवत प्रमाण है, परीक्षित महाराज ने घोषणा कर दी है। अनुवाद देखिए, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। विशते भगवान विशते रीति, हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का और कोई मकसद नहीं है, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हृदय में कृष्ण स्थापित हो जाए, हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाए। और उसके लिए क्या करना है? श्रवतः श्रद्धया नित्यम, हृदय के साथ, श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ, इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना एकमात्र विधि है और हमारे ऊपर तो भगवान की कितनी बड़ी अनुकंपा है कि श्री रूपा जी से महाभागवत महा भक्त परम वैष्णव के द्वारा हम इन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। तो हम सबको एक दूसरे के लिए सदैव हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस भागवतम को नित्य हृदय के साथ श्रद्धा के साथ गंभीरता के साथ सुनते रहें। जब तक जीवन है भागवत को श्रवण करते रहना और इसी से हमारा कल्याण होने वाला है, इसी से हृदय में भगवान प्रकट होने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालयित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। ये बात हमें बहुत दिल से समझनी है कि हृदय के अंदर या तो भौतिक आसक्ति रहेगी या भगवान का प्रेम रहेगा। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं है, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के प्रति यदि आकर्षण और आसक्ति समाप्त नहीं होती है, तब तक भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण रूप में हृदय में नहीं आएगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों को यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी सत्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। बार बार श्री प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि पेशेवर जो भागवत कथाकार होते हैं, जो केवल धन कमाने के लिए भागवतम को प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे हृदय में भगवान को नहीं विराजमान कर सकते। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता श्रोता भक्त बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, मुक्ति की ओर जा रहे हैं या भौतिक आसक्ति में अभी तक लगे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता। उनको तो बस 7 दिन अपनी कथा करके अपना जो 1-2 लाख रुपए कमाना है वो लेके चले जाएंगे। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रख कर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक गंभीरता से सुने, इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। श्रवतः श्रद्धया नित्यम गणतश्च सचेष्टतम। हमें गंभीर होना होगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जिनसे सुन रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो केवल अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए ही ये भागवत कथा सुना रहे या हमारे और अपने कल्याण के विषय में सीरियस भी है। तो अगर वो श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भागवत है तो उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा है ना कि किस तरह से हम जैसे पापियों का, हम जैसे पतित जीवों का कल्याण हो। तो फिर काले नाथ ही देर गहना भगवान विषय दे रही थी, फिर भगवान को हृदय में आने के लिए समय नहीं लगेगा। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित के पास तो सिर्फ 7 दिन थे, लेकिन फिर भी वो बता के जा रहे हैं कि दूसरे लोगों का कल्याण कब होगा, जब गंभीरता से वो श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे और जब ऐसा करेंगे तो शीघ्र भगवान दर्शन देंगे। किंतु छत्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुनने के लिए ना तो कोई गंभीर प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। ये दो कार्य करने हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए गंभीर होना है और भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त होना है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनकर उससे लाभ उठाया। यानी कि श्रीमद् भागवतम को किस तरह से श्रवण करना चाहिए, वो तो अधिकारी जैसे परीक्षित महाराज है वही बताएंगे ना। जो केवल छद्म भक्त हैं, जो सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं भाई भागवतम को नियमित सुनना नहीं है, बस जो इसको कंप्लीट करना है और फिर भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। भगवान को दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवतः श्रद्धया नित्यम सचेष्टितम, श्रद्धा के साथ इन शब्दों को श्रवण करना है। हो सकता है कभी ऐसा हो कि कुछ बातें समझ में ना आए, हो सकता है हमारी मंद बुद्धि के कारण हम कुछ चीजों को अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, श्रद्धा से सुनना है बस, है ना। श्रद्धा से सुनना है, गंभीरता के साथ प्रयास करना है कि हाँ अपना प्रयास करना है, मुझे सुनना है। और इसका लाभ ही होगा कि सुनते 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 भगवान स्वतः काले नाती दीर्घे ना, बहुत जल्दी भगवान आ जाएंगे हृदय में, हमारे हृदय खुद साफ करेंगे। ये से तो पहले बता दिया ना, श्रवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये पत्राणि विदुनोति सुरत। हृदय के अंदर गंदगी है, हृदय के अंदर कलमश है, हृदय के अंदर विकार है, उन सबको कृष्ण साफ करेंगे। हमारा काम तो बस श्रद्धा के साथ इन शब्दों को सुनना। ये जो भागवतम के श्लोक है ना, ये साक्षात भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है। जब हमारे मुख से ये निकलते हैं, जब हमारे कानों में ये जाते हैं, तो ये कितनी प्योरिटी, हमको भले प्रत्यक्ष नहीं पता चल रहा है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन यही तो एक विधि लिखी हुई है ना, कि जैसे जैसे इसको हम सुनते जाएंगे, तो जो हमारा ये जप है ना, जो मैकेनिकल हो रहा है, केवल शब्द निकल रहे हैं मुख से, फिर जब हृदय पवित्र हो जाएगा, सुनते 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 कृष्ण हृदय में स्थापित हो जाएंगे, फिर जब हम महामंत्र मुख से निकालेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो हमारा रोम रोम पुलकित होने लगेगा, हमारी अंतर आत्मा आनंद। महाप्रभु ने कह दिया, आनंदम बुद्धि वर्धनम, हृदय आनंदित हो जाएगा, संसार की समस्त पीड़ाएं, समस्त दुख, समस्त कलेश, समस्त चिंताएं कहीं दूर चली जाएंगी, मन में बुद्धि में कृष्ण स्थापित हो जाएंगे। और हमें गंभीरता के साथ कंटिन्यूस ये करना है, क्या करना है, श्रवतः श्रद्धया नित्यम ग्रहणतश्च सचेष्टितम, कंटिन्यूस श्रद्धा के साथ प्रयास करते हुए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना है। अत्यंत ही सुंदर परीक्षित महाराज आके बता रहे हैं, वे कहते हैं, प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्टः करणरन्ध्रेण स्वानं भावसरोरुहं धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्टः करणरन्ध्रेण, प्रविष्टः मतलब इस प्रकार प्रविष्ट करके, करण रंध्रेण यानी कान के छिद्रों से, स्वानम अपनी मुक्त स्थिति के अनुसार भाव स्वाभाविक संबंध सरोरुह अर्थात कमल का फूल, धुनोति यानी निर्मल करता है, शमलम काम क्रोध ईर्षा तथा गर्व जैसे अवगुणों को, कृष्ण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सलिलस्य यानी जलाशय का यथा जिस प्रकार शरत शरत ऋतु। अनुवाद, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दार्थ अवतार मतलब श्रीमद् भागवत क्या करता है, स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, इसके भावात्मिक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदली जल के तालाबों में शरत ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। ये श्रीमद् भागवतम जो हम श्रवण कर रहे हैं कितना महान कार्य है, या इसके द्वारा क्या होगा, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण भगवान कर्णों के द्वारा हृदय में आएंगे और हृदय के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी अपराध है, जो भी विकार है, दुनोति शमलम कृष्ण स्वयं आके साफ करेंगे। जिस तरह से शरत ऋतु में जलाशय में जो कमल होते हैं उनको वो पवित्र हो जाते हैं, उस तरह से हृदय के अंदर जो गंदगी है वो भागवत श्रवण करने से स्वतः पवित्र हो जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त जीवों को उभार सकता है, अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चुंगल से छुड़ा सकता है वरना अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी एक अकेले भक्त थे, उन्होंने विश्व को पावन कर दिया। कारण क्या है, क्योंकि उन्हें भगवान के शब्दों पर अपने गुरु महाराज के आदेश पर इन श्रीमद् भागवतम की श्लोकास पर भगवान के नाम पर पूरा पक्का विश्वास था। और एक अकेला भक्त यदि वो शुद्ध है संसार के समस्त पतितों का उद्धार कर सकता है और अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते कि वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी थोड़ा सा मेला मटियाला हो जाता है, फिर क्या होता है, शरद ऋतु में जब वर्षा होती है तो सारी नदियों का जल जो है वो स्वच्छ हो जाता है, किंतु ऐसे लेकिन अगर है ना शहरों में कुछ इस तरह से रसायन केमिकल्स डाल के तो छोटी छोटी नदियों को या पूल्स को तो साफ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान की शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है वरना अपनी संगति से दूसरों अनेकों को उबार सकता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योग आसन द्वारा अपना ही कुलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमयी सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकता है। नारद, शुकदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, चाऊ गोस्वामियों तथा उनके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को सुनने के सत प्रयासों द्वारा मनुष्यों को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के हृदय दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। जब हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है ना आध्यात्मिक लोक में उसका बोध होने लगता है और हम जितने भी यहाँ पर जीव हैं उन सबका एक वास्तविक स्वरूप जो है आध्यात्मिक जगत में भी है और आत्म साक्षात्कार होता है जब हम दिव्य शब्दों को श्रवण करते हैं और हृदय पवित्र होता है तो क्या होता है तो हमें हमारे वास्तविक संबंध का कि हम भगवान के दास हैं, सखा है, वात्सल्य प्रेम करते हैं या माधुर्य भाव है उसका साक्षात्कार होने लगता है और तुरंत भगवान की प्रेमय भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा थे वरन वे स्वयं स्फूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक दीन जीवों का उद्धार करते थे। वे इतने शक्ति संपन्न इसीलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती हैं। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं किंतु वे जीव की भक्तिमय सेवा से प्रकट होते हैं। जीव के हृदय में कंटिन्यूस भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शिव अर्जुन तिष्ठति, लेकिन वो प्रकट कब होते हैं जब जीव भक्तिमय सेवा करता है और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है। अगर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्धि हो सकती है किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मेल के कुछ काल तक तलछक बैठ जाएगा जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर से श्रेष्ठ हों किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदली होने की आकांक्षा रहती है। माया के चुंगल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का हमेशा ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं और नियमित रूप से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करके अपने हृदय को पवित्र करके भगवान को उसमें विराजमान करने में सफल हो सकें। हरे कृष्ण।